right page. Is it here?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita Yatha Rupa Anuvad Aur Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ke Dwara Dvitiya Adhyay Shlok Sankhya 28 Avyakta Kya Shlok Avyakte Deksa Shlok kya? Vyakt ya avyakt? Avyakt. Spash nahi hai. So, ek kaam karo, usko pakao ke samne dharo. Avyakta Adini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatra Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Vyakta Nidhanani Eva Tatraka Paridevana Avyakta Dini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidhanani Eva यज्ञका परिदेवना अभ्यक्तादीनि भूतानि यज्ञमध्यानि भारत अभ्यक्तनिर्धनानेव चत्रका परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिर्धनानेव चत्रका परिदेवना
मतम्
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिर्धनानेव चत्रका परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिर्धनानेव चत्रका परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिर्धनानेव चत्रका परिदेवना
अव्यक्तादीनि प्रारंभ में अप्रकट भूतानि सारे प्राणी व्यक्त प्रकट मध्यानि मध्य में भारत हे भारतवंशी अव्यक्त अप्रकट निर्धनानि विनाश होने पर एव इस तरह से तत्र अथ का क्या परिदेवना शोक अनुवाद सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं मध्य अवस्था में व्यक्त होने होते हैं और विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है तात्पर्य या स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं एक तो वे जो आत्म के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्म के अस्तित्व को नहीं मानते कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है आत्म के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है आत्म के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है स्काईस्क्रैपर गगनचुंबी महल जब इससे ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह अदृश्य हो जाते हैं और अंततः परमाणु रूप में बना रहते हैं। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अपकट होती रहती है। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतबंध इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीर नहा, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में है न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चित के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अव्यक्ताधीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र कापरिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्विनीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतत्करकमलं श्रीगुरुं नवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागजातं साद्वैतं सावद्वैतं प्रचलसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशकान्वितांश्च। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बोले न त्वं शोचित मार्हसि, और आज का श्लोक में तत्र का परिदेवना, अर्थात दोनों श्लोक में कि शोक ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कैसे भगवान श्री कृष्ण इस आत्मज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं? कारण था कि अर्जुन शोकग्रस्त और इस प्रकार मोहग्रस्त थे। तो शोक वो ही इस भौतिक जगत में एक मुख्य लक्षण ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। इस भौतिक अवस्था में दो मुख्य प्रकार की अनुभावना होती है, एक है शोक और एक है आकांक्षा। और जो ब्रह्म भूत है, जो भौतिक साधारण चेतना के अतीत होते हैं, जो मुक्तावस्था में है, शोक और आकांक्षा ये दोनों को नहीं करते। तो शोक क्या है कि मैं ऐसी अच्छी स्थिति में थी अभी नहीं, या ऐसा अवसर था नहीं लिया हूं, जो पहले था जो हम अभी नहीं मिलते उसलिए शोक, या एक प्रिय व्यक्ति या प्राणी यदि मार जाते इसलिए हम शोक ग्रस्त होते हैं। और आकांक्षा आशा कि मैं ऐसी अच्छी चीज मिलेगी। ये पूरा आधुनिक समाज आकांक्षा अर्थात काम भौतिक कामनाएं से चलते हैं। वो सब जाएगा में हम देखते हैं तो विज्ञापन होते हैं, घोषणा होते हैं, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, और ऐसे लोगों की कामनाएं बढ़ते हैं। ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से आपका जीवन पूर्ण रूप से आनंदमय होगा, आपका जीवन में आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से खरीद लो। फिर हृदय में आकांक्षा बढ़ती है, कोलगेट टूथपेस्ट मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, फिर मेरा जीवन संपूर्ण सिद्ध होगा। इसका दूसरा नाम है पागलपन। लेकिन यही भौतिक अवस्था ही है, आकांक्षा होते हैं, फिर टूथपेस्ट कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से कुछ खास नहीं होते, फिर शोक होते हैं। और जबरदस्त से ब्रश करना चाहिए। तो शोक और आकांक्षा, अर्जुन शोकग्रस्त, युद्ध करने के पहले बड़ी आकांक्षा थी कि इतना दुख यापन के पश्चात 13 साल 12 साल वनवास और 1 साल गुप्तवास पांडवों, तो बड़ी आकांक्षा थी कि अभी हम युद्ध करके हमारा वास्तव अधिकार, राजा होने के अधिकार हम फिर मिलेंगे। लेकिन युद्ध करने के पहले अर्जुन की आकांक्षा परिवर्तित हो गई शोक के रूप में। आकांक्षा और शोक दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे भौतिक सुख और दुख, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योन आद्यंत अंत कौंतया नतेषु रमते पुत्र। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख क्या है? संस्पर्श जा भोग, इंद्रिय जनित सुख। इंद्रियों भौतिक विषय का के साथ संबंधित होते हैं और वो हम सुख होते हैं, लेकिन उसके साथ सदैव दुख रहते हैं। भौतिक सुख में दुख सदैव रहते हैं और इस प्रकार भौतिक आकांक्षा में शोक का बीज है। तो युद्ध करने के पहले वो बड़ी आकांक्षा से जिससे अर्जुन प्रोत्साहित है युद्ध करने के लिए, वो परिवर्तित हो गया शोक के रूप में। और अर्जुन ने विचार किया कि तो किससे हम युद्ध करेंगे, तो सब लोग भीष्म द्रोण अश्वत्थामा शल्य हमारे गुरुजन पूर्व पक्ष में है और हमारे सब कुटुंबों में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों सब कुटुंब अर्जुन के थे और इसलिए अर्जुन का शोक था। तो जैसे आकांक्षा से प्रोत्साहन होते तो उस प्रकार भी शोक से लोग पूरा क्या बोलते बिना स्फूर्ति बिना तेज निरुत्साह। तो भगवान कृष्ण सभी श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबों को यथार्थ उपदेश देते जिससे हम भौतिक शोक और आकांक्षा से मुक्त हो सकते हैं और हम वास्तव सुख में स्थित सकते हैं, वो सुखी आत्मसुख आत्मा सनातन है। और अनात्मा सब कुछ जो आध्यात्मिक नहीं है उसका वो सभी वस्तुओं का विपरीत लक्षण। आत्मा है सच्चिदानंद सनातन चेतनमय और आनंदमय, और भौतिक स्थिति क्या है? असत अचित निरानंद। असत का मतलब कुछ यहां नहीं रहे, अचित का मतलब वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जो है इस भौतिक अवस्था में वो सब भ्रांत ज्ञान है, भ्रष्ट ज्ञान है और आनंद नहीं है। वो आनंद जो आनंद का नाम नहीं चलते वो दुख से मिश्रित हो, यही संस्पर्श जा भोग दुख के योग है। तो इसके पहले श्लोक में जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, भगवान कृष्ण स्थापन किए कि जो व्यक्ति जो प्राणी का जन्म हुआ उसका मृत्यु फिर हो और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म हो। और सब इस श्लोक में आज श्लोक जो हम पढ़ते हैं तो एक ही बात ही है, परंतु इस श्लोक में केवल कि प्राणियों का जन्म और मृत्यु होते हैं वो नहीं, तो सभी वस्तुओं जो जगत में है सबका आरंभ होते हैं और अंत, आदि और अंत होते हैं। तो सब कुछ जो है जगत में पूरा जगत भी पूरा भौतिक जगत नहीं रहेगा, वो सभी सभी चीजों जिससे और सभी विषय और सभी लोगों जिससे हम जिसके लिए हम प्रयास करते हैं सब अस्थाई है। ये वडोदरा महानागरी अभी महानागरी बन गए, तो इसका इतिहास क्या है, कितना साल से इस वडोदरा नागरी चलते 200 300 400 कोई जानते आप सब वडोदरा निवासी है, सब आउट स्टेशन गए हैं क्या, लगते कम से कम 200 साल। वो गायकवाड कितने दिन, वो गायकवाड राजा कितने दिन पहले है कोई नहीं जानता। एनीवे हम ऐसा कह सकते कि लगते कम से कम 150 साल से इस शहर है, और कभी भी पाकिस्तान की कृपा से अचानक इसका अप्रकट हो सकता है, लेकिन लगता है पाकिस्तान का इतना सा बॉम्ब नहीं है और वडोदरा रखने के लिए वही नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा बॉम्ब है बॉम्बे और दिल्ली के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की कृपा नहीं हो तो काल की कृपा होगी, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। लगता है कि हमारा प्रस्थान के बाद वडोदरा महानागरी अव्यक्त होगा, मतलब स्थिति जो है रहेगा, लेकिन कितने दिन और 100 साल 200 साल क्या है वो आगरा के पास है, नहीं क्या बोलते फतेह सिकरी, क्या बोलते
फतेहपुर सिकरी,
एक विशाल सुंदर नागर बन गए, अभी खाली टूरिस्ट जाते हैं कोई नहीं रहते, गोस्ट टाउन कौन है वहां पर, कितना लोग रहते हैं सब केवल भूत वहां रहते हैं और कुछ कुत्ता कुछ क्या बोलते हैं वल्चर शकुनी, क्या बोलते हैं हिंदी में शकुनी बोलते हैं संस्कृत में, वो बड़ा पक्षी जो मृत शरीरों को खाते गिदर, इसका एक नाम है संस्कृत में शकुन। तो ऐसा है सब वस्तु जो है उसका आदि होते कि कुछ दिन रहते और अंत होते, और पूरा जगत मेरा भारत महान, लेकिन भारत कितने दिन रहेगा, पाकिस्तान के लिए लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो कितने दिन पहले 70 साल के पहले पाकिस्तान ऐसा देश तो नहीं था, और लगता है और 70 साल नहीं चलेगा, कितने दिन रह सकते। मतलब वो पृथ्वी जो वहां पर है वो रहेगा, लेकिन वो देश जो अभी पाकिस्तान का नाम नहीं चलते तो ज्यादा दिन नहीं लगे। तो ऐसा सब कुछ ऐसे है, तो इसलिए शोक प्रकाश का क्या जरूरत, स्मरण नित्यम अनित्यात्मम यही सलाह है कि सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो यहाँ है सब अनित्य है, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ जो हम इतना गंभीरता से मानते हैं और सामने है देश का चुनाव, और चुनाव के बाद क्या नया प्रधानमंत्री आएगा, आएगा और जाएगा, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं प्रधानमंत्री। देवी गौदा, एक बार देवी गौदा प्राइम मिनिस्टर था, चंद्रशेखर, अभी तो जवानों तो ये सब पूर्व प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं सुना लगता, बीपी सिंह सब आया है गया है। बीपी सिंह अभी कहाँ पर है, घर में रहते हैं, डेड मर गया, कहाँ गए वही बड़ा प्रश्न है। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर था तो हर रोज अखबार में प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं वो बोलते हैं, और बीपी सिंह की पत्नी वो अखबार में आया कि वो प्रमाण में कोर्ट में एक बार दिया कि मेरा पति पागल है, याद है आप लोग, एक कोर्ट केस में ही और बीपी सिंह की पत्नी ही बोली कि मेरा पति पागल है, ऐसे साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट में ही, और anyway, it's all come and gone. सब कुछ हटते ही जाते हैं, और क्या रहते हैं, हम रहते, हम आत्मा है, कृष्णा आनंद चिन्मया प्रसन्नतया मनसु या प्राणिनां प्रतिपलं स्मृतामुपेत्या लीलायतेन भुवनानि जयन्त्यजस्रं गोविन्दवादिपुरुषं भगवान कृष्ण की लीला वही पूरे संसार में एक वास्तविक विषय, भगवान की लीला वो सच्चित आनंदमय है, हम आत्मा है, हमारा वास्तव अस्तित्व है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और सब कुछ जो चल रहे वो प्रतिफल प्रतिबिंब के रूप में है। हम सब कुछ जो हम करते हैं, हम संबंध रखते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, और ये सब कृष्ण लीला का अनुकरण है, विकृत प्रतिबिंब, और वास्तव संबंध है कृष्ण के साथ, सब जो सब स्नेह प्यार सब अस्थाई है, और इसलिए शोक होते है। मेरा स्वामी मार गया, इसलिए लगते दिल में, लेकिन क्या होगा, तो आपका स्वामी मार गया और तुम भी मर जाएगी, और उसके बाद पुनर्जन्म होगा क्या खुद के रूप में या देव के रूप में, और उस समय की पूर्व जन्म में आपका स्वामी था तो याद नहीं होगा, तो किस लिए शोक करते। तो भगवान कृष्ण हमारा शाश्वत स्वामी बंधु पुत्र प्रभु आध्यात्मिक अवस्था में भी शोक हो। भगवान कृष्ण के भक्तों अगर एक निमेश में एक क्षण में भगवान का दर्शन नहीं मिलते, वे युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायतम शुद्धायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन मे, वो भगवान कृष्ण का एक क्षण दर्शन नहीं मिलने से वे एक महायुग जैसे लगते हैं और बहुत शोकग्रस्त, लेकिन वो चिन्मय कृष्ण भक्तिमय अवस्था में वो शोक जो है वो परम प्रेम आनंद का विकार ही है। सब सुख और दुख जो है भौतिक अवस्था में वो खाली दुख ही है। और चिन्मय जगत कृष्ण प्रेममय जगत में गोलोक धाम में सुख और दुख जो है वो परम प्रेम का विकार है, परमानंद का विकार है। तो इसलिए ये परामर्श है, तो इसको समझना चाहिए। हमारी वास्तव अवस्था है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक अवस्था में, हम सुखी नहीं हो सकते। और अगर कुछ दिनों में कुछ सुख होते हैं, वो सुख को विकृत हो गया दुख के रूप में। परंतु कृष्ण भक्ति में सदैव आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन पूर्ण वो आनंदम बुद्धि सुख सागर वास्तव सुख उनका सागर सदैव बढ़ते रहते हैं। और आर्कदम में प्रेम सुख आस्वादन होता है। तो इसलिए बार बार सुनने चाहिए वैकुंठ का समाचार। हम इतना उत्साही होते हैं भौतिक जगत का समाचार सुनने के लिए, तो कौन अगला प्राइम मिनिस्टर होगा, अडवाणी होगा या राहुल होगा या मनमोहन वापस आएगा, ये सभी बात चलते हैं। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं और भगवान कृष्ण सदैव रहते हैं। भगवान के कौन भगवान होंगे इसलिए चुनाव नहीं होते, कोई आवश्यकता नहीं। चुनाव से भगवान को स्थापित नहीं होते, वे सदैव ही भगवान। तो हमको चुनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना या इस भौतिक माया के पक्षपाती होंगे। भगवान श्री कृष्ण ये सभी उपदेश के द्वारा प्रयास करते हैं मोहग्रस्त शोकग्रस्त अर्जुन को यथार्थ ज्ञान प्रदान करना, जिससे अर्जुन स्थितोस्मि गत संदेह स्थित होंगे, सभी शंकाओं से मुक्त होंगे। और वो हो ऐसे हो भगवद गीता का अंत में अर्जुन बोले कि नष्टो मोह स्मृति लगता त्वत् प्रसाद स्थितोस्मि गत करिष्ये वचन। मोह जिससे मैं शोकग्रस्त नष्ट हो गया, और पूर्व स्मृति कि मैं आपका दास हूं वो फिर मिल गया। अर्जुन कहते हैं कैसे छत प्रसाद माया अछूता, आपकी कृपा मेरे ऊपर अछूता। कृष्ण का एक नाम है अछूता, अछूता का मतलब जो कभी भी फटीद नहीं होते, जो कभी भी शोकग्रस्त मोहग्रस्त मायाग्रस्त नहीं होते। तो जीव तुच्छ है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति में अधीन हो सकते, परंतु भगवान कृष्ण इस भौतिक मायिक जगत में प्रकट होते हुए भी सदैव इस तीन गुणी सत्व रज तम गुणी जगत का प्रभाव से मुक्त रहता है। भगवान कृष्ण कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते, कभी भी भूल धारणा नहीं करते। छठ प्रसाद अनायच स्थित हो, अभी मैं स्थित हूँ, अभी समझ लिया हूँ, गत संदेह सब शंका चलेगा, और इसलिए करिष्ये वचनं तव। तो यही परीक्षा है, हम माया से मुक्त है कि नहीं, वो परीक्षित होगा कैसे। हम यदि भगवान का आदेश पालन करने के लिए प्रस्तुत है तो यही प्रमाण है कि हम माया से मुक्ति है। हरे कृष्ण, ये बात बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम सुन के हा हा बोलते हैं और द्वार के बाहर जाके हम सब भूल जाते हैं। धन झन सुंदरी के लिए चिंता वापस आते हैं, तो इसलिए तीव्र भक्ति करना चाहिए। और ये सब श्लोक कंठस्थ करने से फायदा होते, अच्छा हो श्लोक कंठस्थ करो। ये सभी अवस्थाओं में हम अगर याद करेंगे वो बहुत बड़ा सहायक होगा। जैसे आज दो व्यक्ति पुत्र पिता मेरे पास है और बोले कि वो विद्यान बाला विद्यान आगे से स्कूटर से यहाँ है, और फात में आने का समय देखा कि एक व्यक्ति आपन को एक कार के सामने क्या किया, तो थ्रू हिमसेल्फ आपन को फेंक दिया और ऐसे सुइसाइड किया। तो दोनों एक सुइसाइड देखा और इसलिए मन बड़ा विचलित था। तो यदि भगवद गीता उपदेश हृदय स्पंदन के साथ चलते हैं हमारा हृदय में, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु से चाहते, तो सभी अब जो भी होगा हम विचलित नहीं होंगे। और इस भौतिक जगत में बहुत कुछ हो सकते होते हैं। हरे कृष्ण। तो अगर किसी के प्रश्न हो जरा सा पूछिए, अभी पूछने का समय है, और कुछ समय के बाद पूछने का समय नहीं होगा, हम भगवद गीता जो उपदेश जो होते हैं हम उसके अनुसार करेंगे। मतलब जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जब मृत्यु आते हैं तो उस समय प्रश्न करने का समय नहीं होगा। तो अभी है समय यही सब बात पर सोचना। जब हम मृत्युमुखी है तो हम कैसे भक्ति करेंगे, हम सब मृत्युमुखी है, लेकिन विशेष को बुढ़ापा में तो शारीरिक बाल नहीं होते हैं, तो कैसे हम भक्ति करेंगे। अभी अवसर है, अभी करो। कुमार आचरित प्रज्ञ धर्मन भगवतानि हर दुर्लभम मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थधन। प्रहलाद महाराज बोले कि बचपन से भक्ति करना चाहिए, कुमार अवस्था से। तो भगवत भक्ति भगवत धर्म की आवश्यकता इतनी बड़ी है कि जीवन का आरंभ से इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके वो जीवन का आरंभ से भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन में कृष्ण भक्ति करना संभव ही है, दूसरे जन्मों में नहीं। और अध्रुवम हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, मानव जन्म मिल गया लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो इसलिए अभी अवसर है और अभी अवसर लेना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो अगर कुछ पूछना है तो पूछो। जीवन का आरंभ से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो बलून से खेलते हो क्यों? भक्ति करो, सिखा दो उसको भक्ति करना। नहीं तो माँ बाप अगर बच्चे को भक्ति नहीं सिखाते, वो बच्चे के परम शत्रु होते, माँ बाप के रूप में शत्रु। स्नेह देने से शत्रुत्व करते यदि कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते। हाँ
भगवद्गीता
में ऐसे बताया
है
कि क्या
हो गया है आत्मा है,
क्या
नहीं
सुना
अभी?
इसको बंद करो आवाज ऐसा।
आत्मा है ये ज्ञान हमें भगवद्गीता पढ़ने से उसका अध्ययन कर देते हैं कि ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा है, लेकिन उसकी अनुभूति
अनुभूति ज्ञान है कि हम आत्मा है और अनुभूति अलग है। तो अनुभूति होते हैं आत्म कार्य करने से, आत्मा का क्या कर्तव्य है? कृष्ण की सेवा करना। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं वो आत्मा का कार्य है, फिर अनुभूति होती है कि मैं आत्मा हूं। यदि हम भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं तो वो मोह की मैं ईश्वरीय हो वो खाली बढ़ेगी। और यदि हम आत्मकार कर्तव्य करते हैं कृष्ण सेवा, फिर कि मैं आत्मा हूँ वो अनुभूति होगी, मैं शरीर नहीं हूँ। अनुभूति आती है कृष्ण सेवा करने से। यही व्यवहार है, बार बार सुनने से कि हम कृष्ण दास हैं, और बार बार कृष्ण नाम गाने से और भगवान कृष्ण का रूप दर्शन करने से। तो ये सच धारणा कि मैं कृष्ण दास हूं, वो संस्कार मन में आते हैं। ऐसा होते नहीं आप सब कौन चाहे राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का दर्शन करते हैं, तो उस समय आप क्या सोचते? तुम नास्तिक लोग या लोग जो भक्ति नहीं करते तो मंदिर आते और देखते प्रतिमा पुतला, और जो भक्ति करते हैं तो भगवान का श्री मूर्ति का दर्शन करने हैं से समझते हैं कि ये मेरा प्रभु है, ये भगवान ही है। वही अनुभूति है, अनुभूति होते। अगर अनुभूति नहीं हो हम क्यों बार बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं? कुछ होते हैं, यदि कुछ नहीं था तो क्यों हम बार बार एक ही मंत्र का कीर्तन करते, अगर कुछ नहीं था उसमें तो हम क्यों करते थे? कुछ होते हैं नहीं? हरे कृष्ण, आपका प्रश्न। प्रारब्ध पाप कर्मों से कब तक आशा होते हैं? जब तक हम पूरा आत्मनिवेदन नहीं करते तब तक वो प्रारब्ध कर्म का आशा हो सकता, लेकिन सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सूचय। यदि हम आत्मसमर्पण है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तो भगवान हमको हमारे सब पाप कारणों से विमुक्त करते, तो फिर भी हम अनुभव करते कि हम प्रयास करते भक्ति में परंतु मन में वो दूषित संस्कार रहते, तो वो क्या है? वो पूर्व संस्कारों वो छाया जैसे रहते, और मन में ही वो सब दूषित चिंतन वो सब होते, लेकिन समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ, और ये सब जो मन में आते हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कोई वास्तव संबंध नहीं है। तो है हो सकते हैं, और संभावना है कि जब तक हम ईश्वर में तब तक कुछ उपद्रव हो सकते जमों का संस्कार हो सकता, जैसे वो शिल प्रभुपाद कही बा वो यमुनाचार्य कृत श्लोक बोले, यदावधि मम चैत कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धाम युद्धम रंथमासी तदावधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। यमुनाचार्य जो परम भागवत है वे एक महान महाराज थे, और भक्ति आने के पहले तो महाराज जैसे व्यभिचारी थे, तो बहुत नारी संगम किए थे। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि अभी मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, कृष्ण सेवा करता हूँ, और उससे नवा नवा रस मिलता हूँ, लेकिन कभी कभी मन में पूर्व दुष्कर्म विशेषकर नारी संगम का स्मरण मन में आते, जब आते हैं भवती मुख विकार मतलब Prabhupada translated it as the lips curl with distaste. Or me, क्या बोलते थू चलते हो, मतलब इसलिए अभी मुझे रुचि नहीं है, तो फिर भी कभी कभी मन में आते है वो स्मरण। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का प्रमाण देने से बोले कि तो पूर्व संस्कार शुद्ध भक्तों का मन में भी आ सकते, परंतु शुद्ध भक्तों तो पूर्व स्मृति से आकृष्ट नहीं होते, नहीं सोचते तो वो एक्चुअली वो नारी संगम अच्छा था और कृष्ण भक्ति इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है वापस नारी संगम करूँगा, तो ऐसे याद नहीं आते। प्रभुपाद स्वयं बोले कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन कभी कभी मन में मेरी पत्नी और संतानों का याद मन में आता है, प्रभुपाद स्वयं भव तो सन्यासियों के लिए वो पत्नी का स्मरण करना निषेध है, लेकिन वो स्वाभाविक है क्योंकि इतने शिल प्रभुपाद इतने साल पत्नी के साथ थे तो मन में आते कभी कभी, लेकिन प्रभुपाद का पूरा प्रयास कृष्ण भक्ति में था तो मन में आते है, लेकिन उससे शिल प्रभुपाद विचलित नहीं थे। तो ये है मन अपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रभुशंति ये यद्वै तद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामे ओ तद्वत् शब्द ओ तद्वत् नारी संग में तो एक ही श्लोक है, वो एक उदाहरण है गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि सागर में बहुत बहुत बड़ी नदियां प्रवेश करते हैं, गंगा यमुना इतने बड़ी नदियां, लेकिन वो सब नारियों का विशाल जल से सागर तो विचलित नहीं होते क्योंकि वो नदियां इतनी विशाल होने के पर तो सागर के तुलना में तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार मन में बहुत बड़ी इच्छा आ सकती, परंतु मन में वो प्रेम सागर अगर हो तो वो सागर ये छोटी छोटी भौतिक के चयन से बहुत बहुत बड़ा है। तो अगर हम स्थित हो कृष्ण भक्ति में तो ये छोटी छोटी इच्छाएं मन में आ सकती, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। कभी हवे बलो शरीर नामार हमार अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संशय। कृष्ण नाम में रुचि होना चाहिए, जब कृष्ण भक्ति पर आकर्षण होते तब फलं दृष्ट्वा निवर्तते। वो श्लोक क्या है, फलं दृष्ट्वा विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवाचं रसोपियस्य फलं दृष्ट्वा निवर्तते। कि जब तक हमारी परम रुचि नहीं हो तब तक निम्न रुचि पर हम आसक्त हो सकते, लेकिन अगर उच्चनी रुचि होती है तो निम्न रुचि के लिए आकर्षण नहीं हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो